वेबू सयादा के चुनिंदा प्रवचन। श्री रॉजर बिशॉफ के बर्मी भाषा के अंग्रेजी अनुवाद से डॉक्टर केदारनाथ द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुदित। सयाजी उबाखी एवं माँ सयामा जी की परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्रों द्वारा प्रकाशित 2019 संस्करण। कॉपीराइट अर्थात प्रतिलिप्याधिकार सयाजी उबाखी मेमोरियल ट्रस्ट यूके। इस पुस्तक की निःशुल्क पीडीएफ इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर इंडिया .org/publications/ वेबू सयादा डिस्कोर्सेस हिंदी बुक .pdf पर उपलब्ध है तथा मुद्रित पुस्तक के लिए कृपया तश्वीन कौर से ईमेल publications.imc@gmail.com द्वारा अथवा भारतवर्ष के 08953778844 पर दूरभाष द्वारा संपर्क करें। इस पुस्तक का प्रकाशन हेमंत सहगल, तश्वीन कौर तथा राकेश माना के अथक परिश्रम एवं अमूल्य योगदान से ही संभव हो सका है। उनके इस परम पुनीत पुण्य कार्य के लिए साधु साधु साधु। इस पुस्तक का यह ध्वनि संग्रह डॉक्टर केदारनाथ द्विवेदी द्वारा ध्वनिबद्ध किया गया है। भाग एक, खंड एक, भूमिका एवं परिप्रेक्ष्य। भूमिका। म्यांमार अर्थात बर्मा विश्व के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां स्थविरवाद पाल में थेरवाद बौद्ध धर्म अभी भी अपने मूल रूप में जीवित है। बर्मा के भिक्षु पाली में भिक्खु थेरवादी बौद्ध शिक्षण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बुद्ध की शिक्षा मुख्य रूप से मन एवं शरीर के बीच के संबंधों के विषय में है तथा इस विषय में है कि मनुष्य का मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है। जब से बुद्ध ने मन एवं पदार्थ के पूर्ण सत्य को समझने में अग्रणी मार्ग की खोज की तब से मानव मन का स्वभाव नहीं बदला है। यह परम वास्तविकता तथा इसे आत्मसात करने के लिए अग्रणी साधना अभी भी वही है और सदैव वैसी ही बनी रहेगी चाहे कोई भी आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति क्यों न हो। अतः वे लोग जो बुद्ध की शिक्षा को व्यवहार में लाते हैं वे स्वयं इस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। शिक्षण की आधारशिला के चार आर्य सत्य हैं। एक, यह सत्य कि सभी संस्कार पाली में संखार अर्थात भौतिक एवं मानसिक अनुबद्धित घटनाएं दुख अर्थात असंतोष जनक हैं। दो, यह सत्य कि इसके पीछे कोई कारण है। तीन, यह सत्य कि इस दुख का अंत भी है तथा चार, यह सत्य कि इस दुख का अंत करने के लिए एक अग्रणी मार्ग है। दुख का अंत करने वाला मार्ग अष्टांगिक आर्य मार्ग कहलाता है जो आठ भागों में विभाजित है और जिन्हें तीन प्रशिक्षणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। शील पाली में सील अर्थात नैतिकता, समाधि अर्थात शांतिपूर्ण मन पर नियंत्रण या चित्त एकाग्रता तथा प्रज्ञा पाली में पय्या अर्थात अंतर्दृष्टि या विवेक। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कुशल, पाली में कुशल अर्थात निपुण या लाभप्रद कहा जाता है, क्योंकि वे व्यक्ति के निर्वाण, पाली में निब्बान की ओर प्रगति में सहायक होते हैं। तथा कुछ अकुशल कर्म हैं जिनका इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। कर्म, पाली में कम्म, के विधान के अनुसार वे सभी कार्य जो लोभ, घृणा तथा अज्ञानता पर आधारित होते हैं वे अकुशल होते हैं। किसी भी प्राणी की हत्या करना, चोरी करना, अवैध यौन संबंध बनाना, असत्य बोलना तथा मादक द्रव्यों का प्रयोग करना, ये सर्वाधिक अकुशल कार्य हैं। गृहस्थ बौद्ध व्यक्ति पंचशील ग्रहण कर इन पांच प्रकार के कर्मों से विरत रहते हैं। एक बार यदि ऐसा कर्म हो गया तो उसके प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रभाव को अंतर्दृष्टि ध्यान की विषय वस्तु नश्वरता की जागरूकता के माध्यम से कम किया जा सकता है, किंतु ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि बुद्ध भी नहीं, जो पाप से मुक्ति का क्षमा दान दे सके, क्योंकि ये प्रभाव कर्म के विधान द्वारा निर्धारित होते हैं जो सभी प्राणियों पर लागू होता है। आदरणीय वेबुसेदा ने इस बात पर बल दिया कि बुद्ध की शिक्षा में पारंगत होने के लिए भावना अर्थात ध्यान की साधना ही एकमात्र उपाय है। ऐसी मान्यता है कि आदरणीय वेबुसेदा एक अरहत थे, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चार आर्य सत्यों को व्यावहारिक रूप से पूर्ण रूपेण समझ लिया था तथा जिन्होंने दुख का अंत प्राप्त कर लिया था। आदरणीय वेबुसेदा द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधि धर्म ग्रंथों में समाधि या चित्त एकाग्रता के विकास के लिए वर्णित 40 तकनीकों में से एक है। इसे आनापान सति कहा जाता है तथा इसमें यह आवश्यक है कि साधक को इन तीन बातों की जानकारी रहे। एक, कि वह श्वास अंदर ले रहा है जब वह श्वास अंदर ले रहा हो। दो, कि वह श्वास बाहर छोड़ रहा है जब वह श्वास बाहर छोड़ रहा हो। तथा तीन, जब जब वह श्वास लेता या छोड़ता है तो उस स्थान बिंदु या नासिका रंध्रों अर्थात नथुनों के क्षेत्र की जानकारी जहां वायु का प्रवाह स्पर्श करता है। विशुद्धि मार्ग में आचार्य बुद्ध घोष आनापान भावना की 16 विधियों या सोपानों का वर्णन करते हैं। यहाँ हम बता दें कि आनापान सति के लिए डॉक्टर तपस्या उपाध्याय द्वारा हिंदी में अनुदित बौद्ध भारती वाराणसी द्वारा प्रकाशित बुद्ध घोष द्वारा विरचित विशुद्धि मग्गों के द्वितीय भाग अष्टम परिच्छेद पृष्ठ 75 देख सकते हैं। किंतु आदरणीय वेबुसेदा अपने शिष्यों को स्मरण कराते रहे कि उन्हें उन सभी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनके लिए केवल आश्वास एवं प्रश्वास की वास्तविकता की जानकारी ही पर्याप्त है। यद्यपि आनापान समथ, पाली में समथ अर्थात मानसिक शांति, समाधि अर्थात चित्त एकाग्रता तथा ध्यान, पाली में ध्यान अर्थात तल्लीनता विकसित करने की एक विधा है। आदरणीय वेबुसेदा का कहना है कि जब चित्त एकाग्रता एक पर्याप्त स्तर तक पहुंच जाती है तब साधक स्वतः ही अनित्य, पाली में अनिच्छ, दुख एवं अनात्म, पाली में अनत्ता, प्रकृति के इन तीन लक्षणों में अंतर्दृष्टि लाभ प्राप्त करता है। यदि इनको पहचानने के लिए उसका दिमाग खुला हो। यहाँ हम बता दें कि पाली में अनिच्छा अनिच्छ का बहुवचन होता है। रोमन लिपि में अनिच्छ की वर्तनी अर्थात अक्षर विन्यास या स्पेलिंग ANICCA होने के कारण पाश्चात्य देशों के लोग अनिच्छ का उच्चारण बहुधा अनिच्छा करते हैं तथा बर्मी लोग अनिच्छा करते हैं। अनिच्छ का अर्थ है नश्वरता, अस्थिरता या परिवर्तन, जो सभी संस्कारों, पाली में संखारों अर्थात अनुबद्धित प्रक्रियाओं की विशेषता है, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक। दुख इन सभी प्रक्रियाओं की असंतोषजनक प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नश्वर एवं परिवर्तनशील होते हुए भी स्थायी संतुष्टि प्रदान कर सके। अनत्ता का अर्थ है अनात्म, आत्मरहित या सारहीनता, तथा यह सभी प्रक्रियाओं के विषय में है, चाहे वे अनुबद्धित हों या अननुबद्धित, संस्कारित या असंस्कारित। बुद्ध के अनुसार कोई भी स्थायी अहम, आत्मा या व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता, अपितु परस्पर आधारित भौतिक एवं मानसिक प्रक्रियाएं मात्र होती हैं। बौद्ध धर्म में अनिच्छ, दुख तथा अनत्ता के ज्ञान को प्रज्ञा, पाली में पय्या अर्थात विवेक कहते हैं, तथा पय्या ही वह गुणवत्ता है जो साधक को निर्वाण तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में सम्मिलित प्रवचनों में से कुछ के संकलनकर्ता ऊ तेलेन लिखते हैं कि आदरणीय वेबूस यादव एक दिन में कभी 5 तो कभी 10 बार तक उपदेश देते थे। उनके प्रवचनों में 7 मुख्य बिंदु सदैव समाहित होते थे। यदि आदरणीय वेबूस यादव ने अपने जीवन काल में 10,000 प्रवचन दिए तो ये बिंदु 10,000 बार प्रतिपादित किए गए। वे इन्हें सदैव सम्मिलित किया करते थे, भले ही उन्हें बार बार दोहराना पड़े। वे उपदेशों की व्याख्या सदैव सरल शब्दों में करते थे, जिससे कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें समझ सके। वे धम्म को समझाने का प्रयास इस प्रकार करते थे कि सबसे कठिन विषय भी सरल हो जाते थे। वे 7 बिंदु इस प्रकार हैं। 1, व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होने की आशा तभी कर सकता है जब वह नैतिकता में परिपूर्ण हो। 2, बौद्ध धर्म में दान या उदारता का अभ्यास करते समय मानसिक दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3, कार्य कारण विधान अर्थात कर्म के फल के विधान में विश्वास के साथ व्यक्ति को सदैव ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। 4, व्यक्ति को मनुष्य लोक या स्वर्ग लोकों के आनंदों की आकांक्षा न करके, जो कि अस्थायी होते हैं, मात्र निर्वाण की आकांक्षा करनी चाहिए। 5, बुद्ध के प्रादुर्भाव के कारण हमें पूरी तरह से सही आचरण एवं विवेक के अभ्यास का तथा इस प्रकार असीम लाभ प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ है। 6. जन्म के क्षण से लेकर मृत्यु के क्षण तक आश्वास एवं प्रश्वास चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह समझना सरल है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो प्रत्येक बार श्वास नाक के निकट स्पर्श करती है। जब वह स्पर्श करे तो हर बार हमें इसका पता होना चाहिए। और 7, जब हम चल रहे हों, कोई काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, हमें सदैव अपनी आश्वास एवं प्रश्वास से अवगत रहना चाहिए। उचित कार्य को, अनुभव को तथा उससे उत्पन्न समझ को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। जैसा कि हम प्रवचनों में देखेंगे, आदरणीय वेबुसेदा चाहते हैं कि उनके श्रोता अपने अनुभवों के माध्यम से स्वयं ही शिक्षा को आत्मसात करें, न कि उन्हें सुनने के माध्यम से। तथा वे कहते हैं कि इस प्रकार जब वे शिक्षा को वास्तविकता के रूप में देखना प्रारंभ करते हैं तो लोग संदेहों से ऊपर उठ सकते हैं। आदरणीय वेबुसेदा का जन्म बर्मी पंचांग के अनुसार 1257 के तबांग माह के शुक्ल पक्ष की 6 तिथि अर्थात 17 फरवरी 1896 को उत्तरी बर्मा में श्वेबो के निकट एक छोटे से गांव इंजिमबिम में हुआ था। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक श्रामणेर, पाली में सामनेर के रूप में प्रवज्ञा ग्रहण की तथा उनका नाम शिन कुमार रखा गया। बौद्ध बर्मा में सभी बालक अपनी किशोरावस्था में या और पहले कभी न कभी कुछ समय के लिए अपने स्थानीय विहार में सामनेर बनते हैं, किंतु सामान्यतया एक पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात घर वापस आ जाते हैं। किंतु शिन कुमार ने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विहार में ही रहने का निर्णय लिया। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने उपसंपदा अर्थात भिक्षु संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की और उसके बाद वे ऊ कुमार के रूप में संबोधित किए जाने लगे। यहां हम बता दें कि वेबुसेदा एक शीर्षक है जिसका अर्थ होता है वेबु के महान शिक्षक। यद्यपि व्यक्तिवाचक नाम जोड़े बिना भी सेयादा शीर्षक एक संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथापि प्रत्येक भिक्षु का एक भिक्षु नाम भी होता है जो कि वेबुसेदा का आदरणीय कुमार नाम था। ऊ कुमार अध्ययन के लिए उस समय के प्रमुख भिक्षु विश्वविद्यालय प्रसिद्ध मसोये विहार मांडले चले गए। अपनी उपसंपदा के बाद 7वें वर्ष में उन्होंने पाली ग्रंथों के अध्ययन का त्याग कर दिया और ध्यान के विषय में जो सीखा था उसे व्यवहार में लाने के लिए वे विहार छोड़कर चले गए। बौद्ध भिक्षु 2 प्रकार की दिनचर्या में से अपना चयन करते हैं, पर्यत्ति अर्थात धर्म ग्रंथों का अध्ययन या पटिपत्ति अर्थात बौद्ध ध्यान का अभ्यास। जबकि विद्वान भिक्षु महान शिक्षा केंद्रों में रहने के लिए अभिमुख होते हैं जिससे कि वे युवा भिक्षुओं को अपना ज्ञान सौंपने में सक्षम हो सकें। साधक भिक्षु वन में एकांत जीवन व्यतीत करने के लिए विहारों का व्यस्त वातावरण त्याग देते हैं। वे बहुधा गुफाओं में अथवा वृक्षों के नीचे रहते हैं तथा केवल प्रातः अपने पिंडपात अर्थात भिक्षाटन के अवसर पर ही लोगों के संपर्क में आते हैं। 27 वर्ष की आयु में मांडले के मसोए विहार से विदा लेने के पश्चात ऊ कुमार ने 4 वर्षों तक एकांतवास किया। तत्पश्चात वे एक संक्षिप्त समय के लिए इंजिमबिंग के अपने पैतृक गांव गए। गांव के विहार में उनके पूर्व शिक्षक ने ऊ कुमार से ध्यान लगाने की उस विधि को सिखाने का अनुरोध किया जिसे उन्होंने अपनाया था, और ऊ कुमार ने वैसा ही किया। उन्होंने कहा, यह निर्वाण प्राप्त करने का एक अल्प पथ शॉर्टकट है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है। यह जांच पर खरा उतरता है तथा धर्म ग्रंथों में संरक्षित बुद्ध की शिक्षा के अनुसार है। यह निर्वाण का सीधा रास्ता है। 13 साधनाओं के एक समूह को धूतांग, पाली में धूतंग की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें प्रायः एकांतवासी भिक्षु अपनाते हैं। यहाँ हम बता दें कि धूतंग साधना के विवरण के लिए विशुद्धि मग्गो प्रथम भाग द्वितीय परिच्छेद धूतंग निर्देश देख सकते हैं। डॉक्टर तपस्या उपाध्याय द्वारा हिंदी में उपरोक्त अनुदित पुस्तक में यह पृष्ठ 83 पर है। इन साधनाओं को आलस्य एवं भोग की प्रवृत्ति से संघर्ष के लिए अभिकल्प किया गया है। कभी न लेटना, यहाँ तक कि सोने के लिए भी नहीं, इनमें से एक साधना या अनुशीलन है। ऐसा अभ्यास करने वाले भिक्षु तंद्रा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूरी रात बैठे हुए ध्यान लगाकर अथवा टहलते हुए ध्यान लगाकर समय व्यतीत करते हैं। इन 13 धूतंगों को अलग अलग अथवा एक साथ भी ग्रहण किया जा सकता है। कहा जाता है कि आदरणीय वेबू से आदा ने न लेटने के अभ्यास का पालन अपने जीवन पर्यंत किया था। उन्होंने यही शिक्षा दी कि न केवल सांसारिक उपक्रमों में अपितु ध्यान साधना में भी प्रयास ही सफलता की कुंजी है, और कि नींद में समय व्यतीत करना समय व्यर्थ करना है। उनके एक शिष्य ने मुझे बताया कि जब वे आदरणीय वेबू स्यादा के अंतर्गत उपसंपदा ग्रहण कर रहे थे तो उनके पास चतुर प्रत्यय, पाली में चतुपच्चय अर्थात भिक्षुओं की आवश्यक वस्तुओं के साथ एक मच्छरदानी और एक तकिया भी थी। आदरणीय वेबू स्यादा ने इनकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये सब क्या है। उन्होंने कहा, भंते, एक तकिया और एक मच्छरदानी। तो स्यादा ने पूछा, क्या ये भी भिक्षुओं की आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं? तो नवदीक्षित भिक्षु ने उत्तर दिया, नहीं भंते, और उन विलासता की वस्तुओं को वापस अपने परिवार को दे देने का निर्णय लिया। यहाँ हम बता दें कि भिक्षु के लिए आवश्यक वस्तुओं में चीवर, पिंडपात अर्थात भोजन, आवास तथा औषधि वर्णित हैं। आदरणीय वेबू स्यादा ने भारतवर्ष एवं श्रीलंका के बौद्ध तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा की। 26 जून 1977 को उनके पैतृक गांव इंजिंगबिंग के साधना केंद्र में उनका निधन हुआ। परिप्रेक्ष्य, इनमें से अधिकांश प्रवचन आदरणीय वेबू स्यादा की दक्षिणी बर्मा में यात्रा के समय विशाल दर्शक समूहों के समक्ष दिए गए थे। आदरणीय वेबू स्यादा को प्रत्युत्तर देने वाले व्यक्ति उनके समीप अगली पंक्ति में बैठे गृहस्थ जन थे। कुछ प्रवचन ऊ ते लेन द्वारा संकलित एवं प्रस्तावित तथा म्यांमार के धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित संग्रह से अनुदित किए गए हैं। अन्य प्रवचन टेप अर्थात ध्वनि संग्रह से श्री रॉजर बिशॉफ द्वारा लिखित रूप में परिवर्तित कर और फिर अंग्रेजी में अनुदित किए गए हैं। चूंकि ये प्रवचन बिना तैयारी के दिए गए थे, इनमें काफ़ी पुनरावृत्ति है, अतः इन्हें थोड़ा संपादित किया गया है जिससे कि पढ़ने में सरलता हो। यद्यपि इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि केवल वही भाग संपादित किए जाएं जहां स्पष्ट पुनरावृत्ति हुई हो तथा जो मात्र वाक्पटुता के लिए हो। पाठक को अभी भी इन प्रवचनों में पुनरावृत्ति मिल सकती है, किंतु कुछ धैर्य एवं सती अर्थात सजगता के माध्यम से वे इनमें व्यावहारिक बौद्ध धर्म के विषय में अनेक अंतर्दृष्टि की खोज कर पाएंगे। आदरणीय वेबुसयादा के प्रवचन ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं हैं जो साधना के स्थान पर बौद्ध दर्शन के अध्ययन को अपेक्षाकृत अधिक प्रधानता देता हो। अपने दर्शकों के साथ उनके संवाद में उनकी ताज़ा सादगी, उनका धैर्य, उनकी प्यारी विनोदपूर्णता और उनकी विनम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त आजकल बर्मा में बौद्ध धर्म का पालन कैसे होता है, इसकी भी एक झलक हमें दर्शक दीर्घा के लोगों के कथनों में मिलती है। इस पुस्तक के द्वितीय भाग में संवाद की शैली में वेबुसयादा के 8 प्रवचन हैं। लिखित पुस्तक में प्रत्येक संवाद के पहले उसको बोलने वाला कौन है, सयादा है अथवा कोई दर्शक शिष्य, यह इंगित किया गया है, किंतु मैंने इसे ध्वनिबद्ध करते समय पुनरावृत्ति कम करने के उद्देश्य से अधिकांशतः यह सूचित नहीं किया है। ऐसा इसलिए कि संवाद सुनते ही सरलता से पता चल जाता है कि इसे किसने कहा है, सामने बैठे शिष्य ने अथवा सयादा ने, क्योंकि शिष्य के संवाद में सदैव भन्ते संबोधन सम्मिलित होता है। लिखित पुस्तक में अनेक टिप्पणियां भी हैं, इन्हें ध्वनिबद्ध करते समय मैंने इन्हें उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया है, तथा मैं यहाँ बता दूँ ऐसा कहकर मैंने इन्हें प्रारंभ किया है एवं स्वर परिवर्तन द्वारा टिप्पणी का समापन इंगित किया है। उसके बाद यदि किसी का संवाद है तो वह किसका संवाद है वह भी इंगित किया है।